मेरे अजीज़ दोस्तों नमस्कार। आज 24 अक्टूबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने अवधारणाओं के ऊपर कुछ बातें की थी और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो अवधारणाएं होती हैं, प्लीज़ इनके ऊपर बहुत गंभीरता से आप सब विचार करें और ख़ासकर अपनी अपनी अवधारणाओं के बारे में, क्योंकि ये अवधारणाएं ऐसी होती हैं जो सच पूछे तो हमारी ज़िंदगी को इतना समेट देती हैं या यूं कह लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में जो उड़ान भरने की ताकत है उन पंखों को काट कर हमें बिल्कुल ज़मीन पर लौटने पोटने कर मजबूर कर देती हैं। हालांकि हमें इस बात का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन बातें तो रहती हैं। क्योंकि एहसास नहीं हो पाता इसलिए हम अपने आप में खुश रहते हैं और सच पूछे तो हम अपने आप को जस्टिफाई भी करते रहते हैं। हर समय हमें यह लगता रहता है हम ही सही हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात या सच पूछिए तो जो खतरनाक बात होती है वो ये कि हम दूसरों को हमेशा गलत मानते हैं कि दूसरे गलत हैं हम सही हैं। और सोच करके देखिए कि अगर हम दूसरे को आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने को बिल्कुल सही मान रहे हैं तो जीवन की वास्तविक स्थिति क्या होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि यह संघर्ष की स्थिति होगी, यह युद्ध की स्थिति होगी, यह तनाव की स्थिति होगी? और अब जरा सा सोच करके देखिए कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ का मतलब पूरी दुनिया में जो धर्म युद्ध हुए हैं, जो राज युद्ध हुए हैं, जो द्वंद युद्ध हुए हैं, वो सब किन के कारण हुए हैं? सिर्फ इसी के कारण कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। पूरा का पूरा जो कौरव पांडव का युद्ध है, जिसे हम महाभारत के युद्ध के नाम से जानते हैं, वो क्या था? दुर्योधन कह रहा है कि नहीं, मैं पूरी तरह सही हूं, और सच पूछिए तो आप उनके तर्कों को देखिए तो आपको लगेगा कि सच में ये तो ठीक कह रहा है। आप उसमें कर्ण की स्थिति को देखिए, जब कर्ण अपनी बात कहता है तो आपको लगेगा कि ये क्या गलत कह रहा है, लेकिन जब कर्ण की बात को ही कृष्ण काटते हैं तो आपको लगता है यार कृष्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ण तो बिल्कुल गलत है। युधिष्ठिर अपनी जगह सही मालूम पड़ते हैं, द्रौपदी अपनी जगह सही मालूम पड़ती, हर कोई अपनी अपनी जगह सही मालूम पड़ता है, बशर्ते कि आप केवल उन अकेले को सुने। केवल उन अकेले को सुने तो लगेगा कि ये अपनी बात जो रख रहा है बहुत ही सही तरीके से रख रहा है और ये बिल्कुल सही भी है। केवल तरीका ही सही नहीं है, इसके तथ्य भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही वह दूसरों को सुनता है उसका टोन डाउन हो जाता है, वह थोड़ा सा ही चकता है, अपनी बात को अब उतने दमखम के साथ नहीं कर कह पाता, सामने वाले की बात को काटने की वह उतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, तब जाकर के कहीं सही स्थिति तक हम पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आज के ही इस लाइफ मैनेजमेंट में जो मैं बार बार कह रहा हूं वो ये कि प्लीज अपनी अवधारणाओं को जांचने और परखने की कोशिश कीजिए। यह बहुत जरूरी है कि हम उन्हें जांचें परखें ताकि हम एक सही स्थिति तक पहुंच पाए, अदरवाइज पता लगा कि हम गलत स्थिति में ही जीते जीते पूरा जीवन अपना गुजार देंगे। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अवधारणाओं की बात कहूं कि किस तरह की अवधारणाएं सामान्य तौर पर हम सबके दिमाग में बनी हुई होती हैं और खासकर हम भारतीयों के दिमाग में, तो कुछ तथ्य इस तरह के बताए जा सकते हैं, कुछ अवधारणाओं को गिनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर खासकर हम लोगों में जाति बोध बहुत गहरा होता है कि मैं इस जाति का हूं। देखिए, ये जो जाति का है ये ऐसा नहीं है, चाहे वो उच्च जाति के हों, मध्यम में ले लीजिए आप, निम्न जाति के हों, सभी में अपनी जाति को लेकर के एक अलग ही तरीके की अवधारणा बनी हुई है। यहां तक कि आप निम्न जातियों में भी देखेंगे तो निम्न जातियों में भी बहुत सी उपजातियां हैं, तो उन उपजातियों में जो थोड़े से ऊपर की जातियां हैं वो अपने को श्रेष्ठ मानती हैं, ठीक है आप श्रेष्ठ मान लीजिए, लेकिन वो नीचे के लोगों को हीन मानना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि जैसे हमारी ही जाति श्रेष्ठ है, मेरी अपनी जो जाति है वह श्रेष्ठ है, और सच पूछिए तो सामाजिक व्यवहार भी बहुत कुछ मैं उसी हिसाब से फिर करने लगता हूं। उदाहरण के तौर पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है कि संस्कृति और प्रशासन के किस तरह से जो भारतीय प्रशासन है वो जो हमारा एक कल्चरल एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें जाति भी है, हमारे प्रशासन को प्रभावित करता है, जबरदस्त रूप से प्रशासन उससे प्रभावित होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है और उसी जाति का व्यक्ति उससे कोई काम कराने आता है, तो आप देखिए कि उसका काम करना आसान हो जाता है, कराना आसान हो जाता है, और साथ ही वो बड़ा भरोसा लेकर के आता है कि यार अपनी ही जाति का वहां बैठा हुआ है ना डीएम एसपी, तो हमारा काम तो हो जाएगा। अगर दूसरी जाति का है तो उसके मन में थोड़ी सी हिचक होती है। ये बात अलग है कि दूसरी जाति का व्यक्ति उसके काम को बहुत जल्दी कर देगा, वो बहुत ही तटस्थ और बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति है, लेकिन उसको भरोसा नहीं हो पाता। तो ये जो भरोसा नहीं हो पा रहा है, आप देखिए कि ये क्या चीज है। जब आप इसे जांचने और परखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि वो ये अवधारणा ही तो है जिसने हम इस अवधारणा ने उसके प्रति हमें बायस्ड कर दिया है, अनावश्यक रूप से बायस्ड कर दिया है। तो सबसे ज्यादा जो गहरे में बैठा हुआ है वो है जाति। इसके बाद है दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं इसी से जुड़ी हुई, जानते हैं आप धर्म, अपने धर्म को लेकर के श्रेष्ठता का भाव, अच्छी बात है आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए, गीता में भी कहा गया है कि निज धर्म में रहना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को नकारना ये गलत है, क्योंकि हम दूसरे के धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ज्यादातर नहीं जानते, ऊपरी तौर पर जानते हैं, जो चीज बता दी गई है वही जानते हैं, और सच पूछे तो अपने ही धर्म के बारे में कौन सा बहुत जानते हैं, गहराई में हम जानते नहीं, कुछ सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों के आधार पर हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं और फिर उन्हीं धारणाओं को जीने लगते हैं। यहां मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, राइट, आपका धर्म किसी, आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ होता तब क्या होता? तब क्या आप अभी जिस धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, उस समय भी यही स्थिति रहती कि आप उस धर्म का पालन तो कर रहे हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसको मान रहे हैं? देखिए मैं वैचारिक स्तर पर नहीं, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, उन्हें लगता है कि नहीं जो दूसरा धर्म श्रेष्ठ है वो अपने धर्म की बुराइयां करते हैं, उनमें आलोचनाएं देखते हैं, और सभी धर्मों की यह स्थिति है कि उनकी आंतरिक कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन चूंकि धर्म को चुनने का अधिकार हमको नहीं था, अगर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो जाति को चुनने का अधिकार हमें नहीं मिला, तो फिर ये बताइए कि उसमें श्रेष्ठता की बात करनी ऐसी क्या है? ठीक है, मेरा जिसमें जन्म हो गया उसे मैं पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं और उनके श्रेष्ठ मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को आगे भी बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी निगाहें दूसरों को नीची निगाहों से देखें। ऐसे बहुत सी बातें हैं मित्रों, पुरुष स्त्री के संबंधों को आप ले लीजिए कि स्त्री के प्रति हमारी धारणाएं क्या हैं, समाज में उन्हें हम क्या स्थान देते हैं, पत्नी के प्रति ले लीजिए, जैसे कुछ आचरण के तत्व हैं, सामान्य तौर पर शराब पीने वालों को हम बहुत ही बुरा मानते हैं, नो डाउट कि जो शराबी हैं वो तो बुरे हैं ही, लेकिन अगर पता लगा कि यार ये सोते समय ना थोड़ी सी शराब ले लेता है या वाइन ले लेता है, जो भी कह लीजिए, आजकल तो एक नए नए सारे शब्द भी आ गए हैं, तो हमें लगता है कि आदमी तो अच्छा नहीं है, जो बहुत ही घोर नैतिकवादी है, हालांकि उसको डॉक्टर ने बता रखा है उसके हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, वो दवाई के रूप में ही ले रहा है, लेकिन चूंकि वो दो बूंद ही भले ही क्यों ना गटक रहा हो लेकिन गटक रहा है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि नहीं नहीं यार ये अच्छा आदमी नहीं होगा, जबकि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसे सब लोग अच्छा कहते हैं, और जब आप उसके संपर्क में आए तब आपकी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार ये तो इतना अच्छा आदमी है, लेकिन मैं इसे समझ क्या रहा था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सी धारणाएं हमारे दिमाग में बनी हुई हैं, नेताओं को लेकर के कुछ अलग तरीके की धारणाएं बनी हुई हैं, जो धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल रहा है उसके प्रति अलग से धारणाएं बनी हुई हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कुर्ता पजामा पहने हुए है और अपने कंधे पर गमछा लटकाए हुए है और माथे पर टीका लगाए हुए है, उसके प्रति आपकी धारणा अलग बनी हुई है, और ये एक धारणा तो बनी ही बनी है कि आदमी अंग्रेजी तो जानता ही नहीं होगा, और पता लगा कि वो सिर्फ अंग्रेजी ही जानता है। तो ये जो धारणाएं हैं बड़ी मजेदार हैं, इनका कभी जायजा लीजिए, मूल्यांकन कीजिए, सोचिए तो आपको खूब मजा आएगा, और सच पूछिए तो ये आपके जीवन को बहुत बेहतर भी बनाएगा। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।